हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शाम के करीब 6 बजे थे जब रूहान गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसका कॉल भी ऑन था। वो मोहिनी से बात कर रहा था। मोहिनी ने उधर से हल्के गुस्से में जवाब दिया, क्या समझने की कोशिश करो, मेरा अपनी लाइफ में कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है तो मुझे कैसे पता हो सकता है कि वैलेंटाइन वीक पर लड़कियों को कैसे खुश किया जाता है। ऊपर से मैं तो खुद एक लड़की हूँ, पता नहीं तुम्हारा दिमाग घुटनों में चला गया है क्या जो तुम मुझसे सजेशन मांग रहे हो अपनी मैडम जी को खुश करने के लिए। रूहान ने भी उसी तरह गुस्से में कहा, तो तुम ही बताओ मैं ये सब पूछने किसके पास जाऊं। स्कूल और कॉलेज में मुझे अपने अलावा किसी को दोस्त नहीं बनने दिया और अब जब दोस्ती निभाने का वक्त आया तो तुमने हाथ खड़े कर दिए। मुझसे दोस्ती की है तो मुझे सजेशन भी देनी पड़ेगी। मोहिनी ने रिपीट होते हुए कहा, रूहान मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम कितना परेशान करते हो मुझे। चलो ठीक है, दोनों एक साथ इंटरनेट पर सर्च करते हैं, जरूर हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा तुम्हारी मैडम जी के लिए। कपल्स लोगों के नखरों में हम जैसे सिंगल प्राणी फंस जाते हैं। उसके बाद मोहिनी इंटरनेट पर सर्च करने लगी। उसकी बात सुनकर रूहान के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई थी। उसने जल्दी से कहा, सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास, तब तक मैं फ्लावर शॉप पर पहुंच जाऊंगा। मोहिनी ने आंखें बड़ी करके कहा, एक तो फ्री में काम करके दे रही हूं, उस पर भी तुम मुझे डेडलाइन दोगे। रूहान ने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, अफकोर्स दूंगा, अब चलो चुपचाप अपना काम करो। इतना बोलकर रूहान ने कॉल कट कर दिया और फिर तुरंत ही अनाही का नंबर डायल किया। अनाही जो ऑफिस में थी, उसने जैसे ही रूहान का नाम अपने फोन पर फ्लैश होते देखा, उसने तुरंत कॉल उठाते हुए कहा, चौहान जी कितनी बार कहा है आपसे गाड़ी ड्राइव करते वक्त मुझे कॉल मत किया करो। चौहान ने गाड़ी की स्टेयरिंग को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, डोंट वरी मैडम जी, मैंने फोन को साइड में रखा हुआ है और मैं बेहद धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, आपके पति को कुछ नहीं होगा, मुझे ये पूछना था कि आप कब तक फ्री हो जाओगी। अनाही ने आंखें छोटी करके कहा, क्यों कोई काम था आपको मुझसे। रूहान ने खुश होते हुए कहा, हां मुझे आपसे बहुत सारा काम था, आप प्लीज जल्दी फ्री हो सकती हो क्या। अनाही ने कुछ सोचते हुए कहा, आज वेदांत जी जल्दी चले गए ऑफिस से क्योंकि विहा की कुछ फाइल्स का टेस्ट करवाना था अस्पताल में, इसीलिए मुझे आने में शायद थोड़ी देर हो जाएगी। रूहान ने अपने मन में कहा, वेदांत भाई की वजह से हमेशा मैं क्यों फंस जाता हूं, मुझे मेरी मैडम जी अपने पास चाहिए। फिर उसने हल्के गुस्से में कहा, नहीं आप जल्दी आ जाओ, मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है आपसे। चौहान के ऐसे जिद करने पर अनाही को थोड़ी टेंशन होने लगी, कहीं सच में रूहान परेशान तो नहीं है। विवाह वाले इंसिडेंट के बाद से जब भी कोई कॉल पर परेशानी से बात करता है, अनाही का दिल बाहर आने को हो जाता है, वो फिर जल्द से जल्द उस इंसान के पास पहुंचने की कोशिश करती है। अनाही ने जल्दी से कहा, आप बताइए कब तक आना है, मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर रूहान खुश हो गया और फिर जल्दी से घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं, आप 8 बजे तक मेरी भेजी हुई लोकेशन पर आ जाना, घर नहीं जाना है। अनाही ने चैन की सांस ली क्योंकि रूहान जिस तरीके से बता रहा था उसे यकीन हो गया था कि जरूर रूहान ने कोई डेट प्लान की होगी जैसा वो अक्सर करता है, और उसमें कोई परेशानी नहीं थी। अनाही ने फिर सुकून भरी सांस भरते हुए कहा, ठीक है आप फिक्र मत करिए, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी और आप अपना ख्याल रखिएगा। चौहान ने लव यू बोलते हुए कॉल कट कर दिया और उसकी गाड़ी एक फ्लावर शॉप के सामने जाकर रुकी। वो गाड़ी से उतरा और तेज कदमों से शॉप के अंदर गया। शॉपकीपर उसे देखते ही मुस्कुरा उठा क्योंकि वो यहां से अनाही के लिए बहुत बार फ्लावर्स लेकर जा चुका था। रूहान ने गौर से पूरी शॉप के फ्लावर्स को देखा और फिर सबसे बड़ा रेड रोज का बुके देखते ही उसकी आंखें चमकने लगी। उसने शॉपकीपर को उस बुके की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप वैसे 5 बुके पैक कर सकते हैं। शॉपकीपर ने जल्दी से मुस्कुराकर हामी हिलाते हुए कहा, बस 10 मिनट सर, अभी रेडी हो जाएंगे, हम एकदम फ्रेश फ्लावर्स का बुके बनाकर देते हैं। ये सुनकर रूहान और भी ज्यादा खुश हो गया और फिर वहां बाकी फ्लावर्स को देखने लगा और वेट करने लगा कि कब शॉपकीपर उसके बताए फ्लावर्स को पैक कर देगा। तो वहीं निमानी हाउस में माधवी रूही से बातें करते हुए उसे सब कुछ बता रही थी कि शादी के बाद क्या करते हैं, कैसे करते हैं और उसे यहां पर किसको क्या कहना है। राधिका तो ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी अपनी बहू के लिए, तो वहीं पार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। माधवी पार्थ को एक कमरे में लेकर गई वहां जाते ही माधवी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें हम लोगों ने कहा था ना कि तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से बन गई? तुम्हें पता है ना इसे किडनैप करके रखना था, ना कि अच्छे से रखना था। वो तो इतनी खुश हो रही थी जैसे उसे तुम्हारे पास कोई तकलीफ ही नहीं थी। अगर हम ऐसा करेंगे तो डॉक्टर रश्मि से आगे काम कैसे करवाएंगे? कैसे हम रूहान की जिंदगी बर्बाद करेंगे और कैसे बहुत सारे पैसे आएंगे हमारे पास? पैसों का नाम सुनकर पार्थ ने आंखें छोटी करके कहा, क्या हम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं ताई जी? माधवी ने जल्दी से अपनी गलती सुधारते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वेदांत और रूहान अब दोनों ही पैसे वाले होने लगे हैं, तो उनसे मुकाबला करने के लिए हमें पैसे भी तो चाहिए। तुम्हें पता है ना जो हमने अपने ही पिता की जान ले ली थी, और अब देखो अपनी माँ को भी मारने पर तुला हुआ है। वो उससे बात भी नहीं करता है, और ऐसे ही उसकी पत्नी है, बहुत लालची है, बहुत मतलबी। हमें कैसे भी करके इन लोगों से पीछा छुड़वाना है, और उसके बाद सब लोग बेहद खुश रहेंगे, तुम्हारी मम्मी भी बहुत खुश रहेगी। ये सुनकर पार्थ ने हामी में सर हिलाया। रितेश, जिग्नेश और माधवी तीनों ने पार्थ के मन में रूहान के लिए नफरत भर रखी थी। उसे लगता था कि रूहान ही हर मुसीबत की जड़ है, रूहान की वजह से ही उसके पापा इस दुनिया से चले गए। निवेदिता परेशान हो गई और उसकी मम्मी भी परेशान हो गई। पूरे निमानी परिवार की इज्जत आज भी चौहान की वजह से हर कहीं उछलती रहती है। वो कहीं क्लब में लड़कियां छेड़ता रहता है तो कभी ड्रग्स लेता रहता है। ऐसी बहुत सारी अफवाहें पार्थ को रोज सुनने को मिलती थीं, जो कि माधवी, जिग्नेश और रितेश इनमें से ही कोई ना कोई उसे सुनाता था, और पार्थ बचपन से ही ये सब सुनते हुए आ रहा था, इसीलिए इतनी जल्दी उसके मन से ये चीज निकल भी नहीं पा रही थी। माधवी ने जैसे ही देखा कि पार्थ पर उसकी बातों का असर हो रहा था, तो उसने खुश होकर पार्थ के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, ठीक है, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो शायद वेदांत ने भी तुम्हें बस इसीलिए देख लिया ताकि तुम अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन रह सको। अब जो उसका कमरा रेडी हो चुका था, पार्थ ने हामी में सर हिलाया और फिर तेज कदमों से माधवी के कमरे से बाहर निकल गया। एक सर्वेंट पहले से दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने पार्थ को उसका कमरा दिखाया। कमरे में जाते ही पार्थ ने पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई। ये कमरा ब्लू कलर से पेंट था, फर्नीचर व्हाइट कलर का था, सब कुछ बहुत ही प्यारा था, लेकिन ये पार्थ की वाइफ का नहीं था। पार्थ को नई जगह पर एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। उसने कमरे को देखकर एक गहरी सांस ली।
तभी वहां वेदांत भी आ गया और उसके साथ रूही भी। वेदांत ने रूही को कमरा दिखाते हुए कहा, आज से तुम दोनों यहाँ रहोगे और आधे घंटे में तुम लोगों का सामान भी यहाँ आ जाएगा, जो जो जरूरत का सामान होता है। बाकी इससे पहले तुम लोग कहाँ रहते थे वहां से भी अपना सामान यहाँ शिफ्ट कर लेना, और किसी भी चीज की जरूरत हो बस एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। रूही ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू सो मच वेदांत भाई, आप बहुत अच्छे हो। वेदांत ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है बेटा, अब तुम रेस्ट करो, बहुत ज्यादा थक गई हो ना, ऊपर से हॉस्पिटल भी जाकर आई हो, तुम्हारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा रेस्ट करोगी तो अच्छा लगेगा।